नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आदि कर्मयोगी अभियान से हर आदिवासी गांव को स्वावलंबी बनाया जाएगा। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल नदबई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी करेंगे और 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत कल से, लोगों में विशेष उत्साह। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनजातीय समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय परंपराएं विकास को प्रकृति के साथ जोड़ती हैं। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान प्रत्येक आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सरकार ने आदिवासी समुदाय पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस क्षेत्र में सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आदि समुदाय को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता रखें।
जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा। जनजातीय परंपराएं हमें याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही होनी चाहिए। आप सब संकल्प ले कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य पूरा करना है और सभी जनजातीय भाई बहनों को साथ लेकर उनके विकास के लिए अथक परिश्रम करना है।
सम्मेलन में राष्ट्रपति ने आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु भी सम्मान पाने वालों में शामिल हैं। ये सम्मेलन जनजातीय ग्राम विजन 2030 पर विचार से कार्यान्वयन तक केंद्रित रहा। अभियान के तहत सम्मेलन के दौरान 5 विषयगत समूह, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और उद्यमिता, बुनियादी ढांचे और शासन तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के वास्ते अब केवल 4 दिन का समय बाकी है। नामांकन पत्र 21 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। अंता रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि अब तक कुल 11 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीट के लिए मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वे वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। इस सीट पर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बीच भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पार्टी के अन्य नेता इस सूची में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक उत्पादन इकाई में बने पहले तेजस LCA MK-1A लड़ाकू जेट विमान का अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने HTT-40 प्रशिक्षु विमान बनाने वाली इकाई का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने नासिक डिवीजन में निर्मित Sukhoi-30 LCA और HTT-40 विमानों की सराहना करते हुए कहा कि इनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उड़ान है। श्री सिंह ने कहा कि इनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को दोहराएगी।
आज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark-1A तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की 2nd प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए Sukhoi-30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिवअप अभियान की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस अभियान के तहत वे सभी लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवा सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और 1,00,000 रुपए से अधिक की वार्षिक आय या पेंशन पाते हैं या निजी चौपहिया वाहन धारक हैं। सरकार ने कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद पकड़े गए अपात्र व्यक्तियों से प्राप्त खाद्यान्न की वसूली की जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज चूरू में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न कार्य कर बड़ी राहत दे रही है। श्री खर्रा ने घोषणा की कि जनता की सुविधा को देखते हुए इन शिविरों की अवधि और बढ़ाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त का वितरण भी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल भरतपुर के नदबई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त के रूप में किसानों के खातों में 7,17,00,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राजस्थान में ये योजना पिछले साल 30 जून को लागू हुई। इसके तहत वार्षिक सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे 9,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। अब किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से हर साल 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे DBT द्वारा मिलेगी। राज्य में अब तक 71,79,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग ने AC और स्लीपर बसों की जांच के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक 1,700 से ज्यादा बसों की जांच की जा चुकी है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त OP बुनकर ने आकाशवाणी को बताया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
संस्थान के अंदर अभियान चल रहा है कि जितनी भी स्लीपर और दूसरी बसें हैं उनमें सुरक्षा मानकों के लेके और बस बॉडी कोड की पालना हो रही कि नहीं हो रही उसको लेके सघन जांच अभियान चल रहा है। उसमें अभी तक 1700 से अधिक बसों की जांच की जा चुकी है और 236 बसें थोड़ी देर पहले तक पूरे राजस्थान में जब्त की जा चुकी है जो कि सुरक्षा मानकों पे या कहीं ना कहीं बस बॉडी कोड का उल्लंघन कर रही थी। कोशिश यह है कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो बस मालिक हैं और बस ऑपरेटर्स हैं उनको 2 दिन से परिवहन विभाग यही आह्वान कर रहा है कि जांच में पूरा सहयोग करें।
श्री बुनकर ने बस मालिकों का आह्वान किया कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करने में सहयोग करें और यदि वाहन में सुरक्षा की कोई कमी है तो उसे दूर करें। इस बीच जैसलमेर बस अग्निकांड में बुरी तरह झुलसे लोगों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने बताया कि आज एक और व्यक्ति की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 23 हो गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 13 अन्य लोग भर्ती हैं जिनमें से 8 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। 5 दिवसीय दीपोत्सव कल से शुरू हो रहा है। कल धनतेरस के साथ पर्व का शुभारंभ होगा। धनतेरस या धन त्रयोदशी पर सोने चांदी के सिक्के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। अगले दिन रूप चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन महिलाओं के सजने संवरने की परंपरा है। इस बार अमावस्या 20 और 21 अक्टूबर 2 दिन रहने के कारण दिवाली पर लक्ष्मी पूजन अलग अलग स्थानों पर सोमवार तथा मंगलवार को होगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन और अन्नकूट की धूम रहेगी जबकि 23 अक्टूबर को भाई दूज के साथ पर्व का समापन होगा। दीपोत्सव को लेकर प्रदेश भर में लोगों में विशेष उत्साह है। बाजारों दुकानों घरों और कार्यालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जयपुर के बाजारों में रंगीन लाइटों से सजावट की गई है। दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है। लोग नए कपड़े जेवर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और सजावटी चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही वाहनों की भी अच्छी बिक्री हो रही है। उपभोक्ताओं को इस बार GST बचत उत्सव का भी फायदा मिल रहा है। दीपावली पर पटाखे चलाने की भी परंपरा है लेकिन राजधानी जयपुर में इस बार पटाखे चलाने के प्रति कम ही उत्साह दिख रहा है। दीपोत्सव और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पाली के तखतगढ़ में नगर पालिका ने फायर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान अग्निशमन वाहनों का रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया गया। उधर सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में भी आग लगने की काल्पनिक सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि इस अभ्यास में पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न विभागों की तैयारियों और उनकी तत्परता का आकलन किया गया। अभ्यास के बाद सामने आई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दौसा जेल में इस दीपावली पर एक अनूठी पहल की गई है। श्यालावास विशेष केंद्रीय कारागार के बंदी इस बार त्योहार के लिए पर्यावरण अनुकूल दीपक बना रहे हैं। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस काम में बंदी मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य बंदियों में सकारात्मकता, श्रमशीलता और कलात्मकता को बढ़ावा देना है। इस दीपावली पर जेल परिसर को इन्हीं दीपकों से रोशन किया जाएगा, जो उनके श्रम का सम्मान होगा। बालोतरा पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बालोतरा के पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि आरोपियों ने बालोतरा में लगभग 12,000 और प्रदेश भर में 50,000 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड बेचे हैं। उन्होंने लोगों से अपने नाम पर सिम कार्ड की जानकारी प्राप्त करने की अपील की, जिससे किसी भी तरह के धोखे से बचा जा सके।
PHQ द्वारा साइबर क्राइम्स को रोकथाम के लिए ऑपरेशन ब्लैक सिम एक अभियान चलाया जा रहा था। उसमें हमें सूचना मिली थी कुछ पॉइंट ऑफ सेल से लोगों का नाम पे फर्जी सिम इश्यू करने का सामने आया। उसका हमने सूचना डेवलप करते हुए हमारा साइबर सेल ने एक गैंग पकड़ी है। 10 लोगों का एक जो गैंग है, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल से जाएगा, उसका नाम पे एक सिम उसके लिए देंगे और दूसरा सिम फर्जी तरीके से उसको बिना जानकारी उसको सिम और एक इश्यू करके वहां से अलग अलग जगह पे बेचते थे और उस सिम को गलत गतिविधियों में यूज करने के सामने आया है और इसमें टेक्निकल जांच जारी है और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी कार्रवाई जारी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आदि कर्म योगी अभियान से हर आदिवासी गांव को स्वावलंबी बनाया जाएगा। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल नदबई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी करेंगे। और 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत कल से, लोगों में विशेष उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।